आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण और सगुण भक्त की समान भावभूम और उसके अंतवर्ती सूत्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। प्रेम ही पुरुषार्थ है, मोक्ष नहीं। भगवान के प्रति प्रेम कौलीन्य से भी बड़ी चीज है। भक्त भगवान से भी बड़ा है। भक्त के बिना शास्त्र ज्ञान और पांडित्य व्यर्थ है, नाम रूप से भी बढ़कर है। यह भक्त की वह उदात्त भावभूम है जिस पर निर्गुण संत और सगुण भक्त दोनों एक साथ खड़े हैं। भक्त की यह वह जमीन है जहाँ वर्ग, वर्ण, धर्म, नस्ल और संप्रदाय, लिंग और जात से संबंध रखने वाले सारे भेदभाव भस्म हो जाते हैं। धर्म और उनसे जुड़े सारे मतवाद हाशिए पर चले जाते हैं। धर्म अपनी उस शक्ल को लेकर सामने आता है जो नितांत मानवीय शक्ल है, वह धारण करने योग्य है, करणीय और मानवोचित कर्मों के समुच्चय के रूप में अपनी पहचान कराता है। उससे जुड़े सारे बाह्य आचार यहाँ अपना अर्थ खो देते हैं, वह मानुष धर्म का पर्याय बनता है। भक्त की कविता, वह निर्गुण भक्त की हो अथवा सगुण भक्त की इस उदात्त भावभूम को उसमें उससे जुड़े संतों और भक्तों की अपनी सामायिक सोच की भिन्नता के बावजूद हम उसकी सही पहचान के रूप में पाते हैं। भक्त की यह वह जमीन है जिसमें जैसा हमने कहा, निर्गुण संत और सगुण भक्त दोनों अपनी नितान्त मानवीय शक्ल में हमसे मुखातिब होते हैं। समूची मनुष्यता को संबोधित करते हुए मानव मात्र की कल्याण कामना के प्रति समर्पित मनुष्य के दुख, क्लेश, ताप और त्रास के प्रति समान रूप से संतप्त और उसके हर्ष, उल्लास, उमंगों और आशाओं में समान सहभागिता के साथ। आइए भक्त की इस कविता में कुछ गहरे धंस कर हम उसके सार तत्व का साक्षात्कार करें। भक्त के आंदोलन ने उत्तर भारत में सर्वप्रथम निर्गुण भक्त के रूप में अपने को परिभाषित किया। वह निर्गुण भक्ति मध्य युग के इस संक्रांति काल में अकस्मात उपजी कोई चीज नहीं थी। वह समय की जरूरत बनती हुई वस्तुतः सिद्धों और नाथों के समय से ही अपने लिए मार्ग प्रशस्त कर रही थी। सिद्धों की अपनी उपासनाचर्या जो भी हो उन्हें वामाचारी और वाम मार्गी कहा गया है, किंतु उनके संप्रदाय का जो स्वरूप सामने आया उसमें न केवल नीची कहे जाने वाली जातियों के सिद्ध कहे और माने जाने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या सामने आई, उनके संप्रदाय का जनाधार भी समाज की नीची मानी जाने वाली जातियों से संबद्ध जनता का था। नीची कहे जाने वाले यह जनता चली आ रही सामाजिक संरचना की भेदमूलक दृष्टि का शिकार तो थी ही, वह उपासना के ऐसे मार्ग की तलाश में भी थी जिसमें बिना किसी मध्यस्थ के वह अपनी आध्यात्मिक मंजिल पा सके। सिद्धों के ही तरह नाथ पंथ भी क्रमशः क्रक्ष योगचर्या के साथ एक ऐसे ही उपासना मार्ग का संधान कर रहा था जिसमें समाज के सारे लोग बिना किसी भेदभाव के चलते हुए अपनी आध्यात्मिक तृष्णा को शांत कर सकें। इस्लाम के भारत प्रवेश के साथ साधारण मुसलमान जनता के साथ होने वाले यहाँ के साहचर्य ने उपासना के एक समान मार्ग की जरूरत को और भी रेखांकित किया। वस्तुतः आगे चलकर कबीर के नाम के साथ जिस निर्गुण पंथ के धूम से चल निकलने की बात आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने की है, वह इन्हीं जरूरतों का परिणाम था। कबीर का निर्गुण पंथ वर्ग, वर्ण, धर्म, जाति, नस्ल और संप्रदायगत सारे भेदों को अमान्य करता हुआ उपासना और भक्ति का एक ऐसा रूप लेकर सामने आया जिसमें जन जन की शिरकत के लिए पूरा अवकाश था। कबीर इस निर्गुण पंथ के शलाका पुरुष के रूप में सामने आए। अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने अपने जिए भोगे और आंखों देखे के हवाले से जो कुछ कहा उनके अपने समय को देखते हुए तो वह एक मिसाल है ही। शताब्दियों बाद उसकी अनगूंज हमारे अपने समय में भी उतने ही ओजस्वी रूप में सुनी जा सकती है। कबीर की ज्यादातर चर्चा उनके समाज दर्शन और चले आ रहे सामाजिक भेदभाव और पाखंड, धार्मिक पाखंड के खिलाफ उनके ओजस्वी उद्गारों को लेकर हुई है। कबीर के कहे हुए का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। आचार्य पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के संदर्भ में उनके जिस अस्वीकार के साहस की बात की है वह उनके समाज दर्शन के इसी पहलू में सबसे अधिक भाषर हुआ है। न केवल उन्होंने चली आ रही सामाजिक संरचना की अमानवीयता को उद्घाटित किया है, धर्म के नाम पर सहस्राब्दियों से चले आ रहे धार्मिक पाखंड और उससे जुड़ी अंध आस्थाओं की भी धज्जियां उड़ाई हैं। इस बिंदु पर उन्होंने न तो हिंदू धर्म के रूढ़िवाद को बख्शा और न ही इस्लाम के अनुयायियों के प्रपंच और बाह्याचार को। दोनों धर्मों के अंधे पैरोकारों को चुनौती देते हुए उन्होंने धर्म के मर्म को अपने अर्जित अनुभवों के आधार पर व्याख्यायित किया और उसे वास्तविक मनुष्यता के उन तत्वों से जोड़ा जिनसे संबद्ध होकर ही धर्म चरितार्थ होता है। धारण करने योग्य मानवोचित करणीय धर्म कर्मों के रूप में अपनी पहचान कायम करता है। जब खुदा या राम एक है, अलग है, चारों तरफ उसी का नूर है, जब एक ही मिट्टी से सब गढ़े गए हैं, एक ही रक्त मज्जा हाड़ मांस सब में है, एक ही रास्ते से दुनिया में आए हैं, जब अपने रखे एक एक घर में एक एक प्राणी में वह समाया हुआ है, तो कैसा है और कहाँ का भेदभाव। जो कुछ भेदभाव है वह उसका नहीं मनुष्यकृत है, जिसकी खिलाफत करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। कबीर ने अपने निशाने अपने इस मिशन पर आजीवन चले, अकेले चले, निर्भय होकर चले। प्रेम को मोक्ष से भी बड़ा पुरुषार्थ मानकर संतों और भक्तों ने उसकी जो विवृत्ति की है, उसके तहत यह प्रेम तत्व अपनी बहुआयामता में एक और मनुष्य को उसके मनुष्य होने की सार्थकता से जोड़ता है, दूसरी ओर उसे उस ईश्वरीय तत्व का एहसास कराता है जो सर्वव्याप्त है। प्रेम के मार्ग से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, उसे पाने का और कोई मार्ग नहीं है। मनुष्य होने की चरितार्थता के रूप में और ईश्वर की प्राप्ति के एकमात्र माध्यम के रूप में प्रेम की यह महिमा निर्गुण तथा सगुण संतों और भक्तों ने समान रूप से उजागर की है। प्रेम की यह वह जमीन है जो हर प्रकार के भेदभाव से परे है, जिसमें कोई द्वित्व नहीं है। वहां पहुंचकर मनुष्य एक ओर अपने को पाता है, दूसरी ओर उस ईश्वर को जो उसे इसी जमीन पर उसकी इसी मनुष्यता के साथ उसे मिल सकता था, किंतु प्रेम की इस जमीन पर पहुंचना सरल नहीं है। कबीर के यहाँ बड़ी कठिन शर्तें हैं, जिसकी पूर्ति हरेक के बूते की बात नहीं है। कबीर कहते हैं कि इस जमीन पर पहुंचने के लिए मनुष्य को अपना शीश काटकर अलग धरने के लिए तैयार होना चाहिए। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना, शीश उतारे भूं धरे, सो घर पैठे आए। यह जमीन बिना किसी भेदभाव के राजा प्रजा सबके लिए सुलभ है, बसरते मनुष्य अपने शीश का बलिदान करने के लिए तैयार हो। प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न हाट बिचाए, राजा प्रजा जय रुचे शीश दे ले जाए। शीश काटने से कबीर का आशय है उस सारे अहंकार, उस सारे भेदभाव, उस समस्त प्रपंच को सदा के लिए भस्मीभूत कर देने से, विनष्ट कर देने से, राउंड डालने से, जिसके चलते मनुष्य अपने को राजा, दूसरे को प्रजा, अपने को ऊंचा, दूसरे को नीचा, अपने को संपन्न, दूसरे को निर्धन, अपने को हिंदू, दूसरे को मुसलमान, अपने को बड़ा, दूसरे को छोटा, और इसी तरह न जाने क्या क्या समझता रहता है। कबीर घर फूकने की बात भी करते हैं, यह घर भी और कुछ नहीं प्रपंचों का समुच्चय ही है। वे लुकाठी लिए अकेले बाजार में खड़े रहते हैं, कोई उनके साथ नहीं आता। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। कबीर मध्यकाल में जन्मे होने के बावजूद इतने आधुनिक भक्ति में सराबोर होते हुए भी, इतने सेक्युलर और अनपढ़ होते हुए भी, इतने ज्ञानी है, उन्हें ज्ञान मार्ग की शाखा का प्रतिनिधि माना गया है, इसीलिए है कि वह सब कुछ कर चुके थे, कर सके थे, जिसकी आकांक्षा वे दूसरों से करते थे। उन शर्तों की कसौटी पर पहले उन्होंने अपने को परखा था, खाड़े की धार पर पहले वे खुद चले थे, जिन शर्तों की पूर्ति की अपेक्षा उन्होंने अपने समय के लोगों से की थी। उनका अपने को ना हिंदू ना मुसलमान कहना उक्ति भर नहीं, उनकी अपनी हकीकत थी। हिंदू मुसलमान होने से बेहतर वे आदमी होने को मानते थे, आदमियत को मानते थे। अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने पंडितों की नगरी काशी में एक लंबा आयुष्य जिया। उनके बीच वे दिन नहीं हुए, घिघियाए नहीं, अपने स्वाभिमान को बनाए रखकर जिए। उन्हें चुनौतियां दी, उन्हें निरुत्तर किया, इसी अपने आत्मबल के चलते उन्हें उसे नियामत के चलते जिसे उन्होंने प्रेम के रूप में परिभाषित किया, और जिसे तराजू के एक पल्ले में रखकर दूसरे पल्ले में सारे पोथी जान को रखते हुए महज ढाई अक्षरों के बल पर तौल दिया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। संवेदना विहीन प्रेम विहीन पांडित्य उनके लिए ईंट और पत्थर से अधिक नहीं था। पढ़ पढ़ के पाथर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कविराजा पर प्रेम की पड़ी न एक छींट। अपनी आंखों से वे सारे संसार को अपने प्रपंचों की आग में जलता देख रहे थे। वे लोगों के गले लगना चाहते थे, पर किसके गले लगे, किसके साथ रहे, किसके साथ चले, सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। कबीरा कोई ना मिला, जासो रही है लाग, सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग। कबीर जो रात रात भर जागते हुए अपने रोने की बात करते हैं और आराम से खा पीकर तमाम सांसारिक लोगों के सुख की निज सोने का उल्लेख करते हैं, उसे इसी संदर्भ में देखने की जरूरत है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। वे जानते थे कि इतने प्रपंचों और ऐसी मानसिकता के साथ कहीं भला सुख से सोया भी जा सकता है। वे संसार के इस अज्ञान, आत्मछल, आत्ममुग्धता और इस छद्म पर रोते और आंसू बहाते हैं। ईसा मसीह की यह उक्ति याद आती है, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। सच्चा संतत्व यही है और कबीर होने का मतलब भी यही है। हमने ऊपर कबीर को आधुनिक और सेक्युलर कहा है। कबीर मध्य युग में जीते हुए भी चले आ रहे सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद मनुष्य और मनुष्य को वर्ग वर्ण नस्ल धर्म और संप्रदाय में बांट देने वाली मानसिकता और इसी आधार पर एक विशाल मनुष्यता के प्रति होने वाले बृहत सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और इस मनोवृत्ति को वैध ईश्वर प्रदत्त एवं सनातन ठहराने वाली शक्तियों, वे धर्मशास्त्र हो, समाज सत्ता के प्रभु हो, कोई भी हो, को बेनकाब करते हैं। अंधविश्वासों और पूजा तथा उपासना से जुड़े पाखंड पर हंसते हैं और हम 20वीं सदी के इस बिंदु पर भी मध्यकालीन सारी रूढ़िवाद को, चली आ रही सामाजिक संरचना की अमानवीयता को, समाज और धर्म से जुड़ी संकुचित और उन्मादी मानसिकता को ढो रहे हैं, गणेश को दूध पिला रहे हैं। आधुनिक कौन है, कबीर या हम? कबीर अपने को ना हिंदू ना मुसलमान कहते हुए मात्र मनुष्य के रूप में अपनी पहचान पर बल देते हैं। ईश्वर को सब में सब जगह अलख और अरूप बताते हैं, धर्म को उसकी उच्चतम भूमि पर अपनाते हैं और हमें अपनाने की सलाह देते हैं। बाह्याचारों की धज्जियां उड़ाते हुए खुदा को, राम को अपने भीतर देखने और उसमें किसी भी भेद के न होने, उनके एकात्म को रेखांकित करते हैं। हम मंदिर और मस्जिद में राम और खुदा को सीमित कर एक दूसरे के उपासना स्थलों को ढाते हैं, संप्रदायगत घृणा और हिंसा की फसलें बोते हैं और उन्हें सींचते हैं। कबीर आदमी को महज आदमी की निगाह से आदमी के रूप में देखने की हिमायत करते हैं। हम आदमी को हिंदू मुसलमान ऊंच नीच अस्पृश्य अस्पृश्य रूप में देखते और उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। सेक्युलर कबीर हैं या हम? सेक्युलरिज्म धर्म निरपेक्षता नहीं है, वह सर्वधर्म संभाव भी नहीं है। सेक्युलरिज्म आदमियत का दूसरा नाम है, आदमी को सारे भेदभाव से परे महज आदमी के रूप में पहचानने का नाम है, जिसे हम मनुष्य धर्म कहते हैं, जिसे चंडीदास मनुष्य सत्य कहते हैं, उसका नाम है। कबीर इन्हीं अर्थों में सेक्युलर हैं। धार्मिक होते हुए भी वे सांप्रदायिक नहीं है, संत होते हुए भी पेशेवर नहीं है। कबीर ने जो कुछ कहा, उन्होंने जो कुछ आचरित किया, वह 20वीं सदी के इस बिंदु पर हमें ऊपर के सवालों से मुखातिब करता है। काल की गणित सरल गणित नहीं होती, ठेठ हमारे समय में जीने वाले काल की इस विलक्षण गणित में हजारों साल पहले के साबित होते हैं और कबीर जैसा सैकड़ों हजारों साल पहले का कोई अपने मन और आचरण की तेजस्विता में हमारे अपने समय का बन जाता है। कबीर इसीलिए महज आधुनिक ही नहीं, हमारे समकालीन भी बनते हैं। मात्र समकालीन ही नहीं, आज की विडंबना और विपर्यय प्रधान स्थितियों में हमारे मार्गदर्शक, हमारे अगुआ, हिरावल में चलने वाले हमारे हम सफर। कबीर की निर्गुण भक्ति का यही मूल्य और महत्व है। आइए निर्गुण भक्ति के दूसरे आयाम को, जिसे प्रेम मार्गी कहा गया है, देखें। इस आयाम की विवृत्ति सूफी फकीरों के जरिए हुई है, जिनमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम शीर्ष पर है। अपने आर्य शास्त्रानुमोदित संस्कारों की चलते आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की आलोचना की है, किंतु जहाँ तक जायसी का सवाल है, उन्होंने उनकी भूर-भूर प्रशंसा की है। अपने संस्कारों और आग्रहों के चलते शुक्ल जी को कबीर के अंतस का मनुष्य नहीं दिखाई दिया, किंतु जायसी में उनके मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने उनके मनुष्य को महज देखा ही नहीं, खुलकर सराहा भी है। उन्होंने लिखा है कि मुसलमान होते हुए भी जायसी ने अपने मनुष्य होने का परिचय दिया, जायसी की इस मनुष्यता का उन्होंने उनकी सहृदयता में देखा, जिसके चलते मुसलमान होकर भी हिंदू घरों की कहानी उन्होंने पद्मावत में लिखी पूरी भावुकता के साथ। इधर सूफी प्रेमाख्यानकारों पर भी संकुचित हिंदू मानसिकता ने इस्लाम के प्रचार के आरोप लगाए हैं और उनकी धर्मपरक मानसिकता को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, किंतु शुक्ल जी के यहाँ ऐसा नहीं है। हिंदी के वे पहले समीक्षक हैं जिन्होंने जायसी को सांप्रदायिक नहीं माना, उल्टे उनकी सेक्युलर मानसिकता को रेखांकित किया और उसे विशद भी किया। जायसी वस्तुतः धर्म की उसी उदार मानसिकता के स्वामी हैं जो धर्म को मानवोचित करने योग्य कर्मों के रूप में परिभाषित करती है। वे कहीं से भी अंधार और संकुचित नहीं है, अवध की मिट्टी में और उस मिट्टी से पाई प्रेरणाओं में रचे बसे हैं। अवध के लोक जीवन की वे उद्गाता हैं तुलसीदास की तरह, प्रेम कबीर की ही तरह। उनका भी मूल मंत्र है प्रेम के जरिए ही आदमी परमात्मा को पा सकता है। पद्मावत का रूपक इसी जमीन पर खड़ा हुआ है। हमारा इरादा यहाँ जायसी के पद्मावत का विवेचन नहीं है। हम जिन दो बिंदुओं को उनके संदर्भ में खास अहमियत देना चाहेंगे वे बिंदु हैं उनके द्वारा कही गई इस प्रेम की महिमा और उसी से उपजी उनकी सेक्युलर मानसिकता। बी ए देवनारायण शाही ने अपनी किताब में जायसी को रूढ़ अर्थों में सूफी भी नहीं माना है, उन्हें सूफी संत के बजाय उन्होंने प्रेम का कब अपने समय के त्रासद ऐतिहासिक और राजनीतिक यथार्थ का चितेरा और निर्भ्रांत सेक्युलर मानसिकता का रचनाकार माना है। शाही के ये निष्कर्ष गौरतलब ही नहीं उनके गंभीर मनोमंथन की उपज हैं। संपूर्ण पद्मावत में जायसी ने प्रेम की महिमा गाई है, प्रेम जो मनुष्य को ईश्वर से मिला देता है, मानस प्रेम भयो वैकुंठी। रत्नसेन इसी प्रेम के आवेग में पद्मावती तक पहुंचता है, नागमती तो इसी प्रेम के चलते अपने पति को पुनः पाती है और पद्मावती जो इसी प्रेम का आलम्बन है। अलाउद्दीन के यहाँ प्रेम नहीं वासना है, जायसी ने उसे पद्मावत में विलेन के रूप में शैतान के रूप में पेश किया है। प्रेम के प्रकाश को ही जायसी ने सर्वत्र देखा और दिखाया है। प्रेम की महिमा सचमुच अपरंपार है। प्रेम घाव दुख जान न कोई, जही लागे जाने पर सोई। प्रेम पहार कठिन विधि गाढ़ा गढ़ा, सौ पै चढ़े जो सिर सौ चढ़ा। जही के हिये प्रेम रंग जामा, काते ही भूख नेद विश्रामा। प्रेम समुद्र जो अति अनगाहा, जहाँ न वार न पार न था। इतिहास साक्षी है कि अलाउद्दीन चित्तौड़ तो जीत लेता है परंतु पद्मावती उसे नहीं मिलती। इतिहास तो इतना ही लिखता है, जायसी कुछ और भी लिखते हैं। अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ के गढ़ में इस्लाम का झंडा फहराने पर मुसलमान जायसी खुशियां नहीं मनाते, उल्लसित नहीं होते। अलाउद्दीन खिलजी को बादशाह होने के बावजूद उनकी औकात जरूर बता देते हैं, उसकी संकुचित मानसिकता को लानत देते हैं। पद्मावती तो नहीं, चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती की राख मिलती है। जायसी इसी बिंदु पर सच्चे धर्म के मर्म को जानने वाले मुसलमान या सूफी फकीर के रूप में हमसे मुखातिब होते हैं। वे लिखते हैं, जवहर भय सब स्त्री पुरुष भय संग्राम, पात साह गढ़ चूरा चितौर भा इस्लाम। यह तो इतिहास है किंतु इसके बाद, छार उठाई लीन एक मुठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। जव लही ऊपर छार न पड़े, तव लही यह तिसना नहीं मरे। धन सोई जस कीरत जासु, फूल मरे पै मरे नवासु। मोहम्मद कब यह जोरी सुनावा, सुना सो पीर प्रेम कर पावा। जोरी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नैनन जल भेई। अव मैं जान गीत अस्कीन्हा, मखिया रह जगत महचिन्हा। निर्गुण संत कबीर और सूफी फकीर जायसी के उपरांत सगुण भक्तों सूर और तुलसी का जायजा लें। हिंदी क्षेत्र में जिनकी लोकप्रियता की मिसाल नहीं है, सूरदास अपनी विनय आदि के बावजूद प्रधानतः श्री कृष्ण की लीलाओं के गायक हैं। वे वल्लभाचार्य के शिष्य और पुष्ट मार्गी भी हैं। अष्ट छाप के जहाज, जिस प्रेम तत्व की बात हमने ऊपर की है, जिस प्रेम को सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना गया है, प्रेमा पुरुष उमर्थो महान, सुर उस प्रेम के भी तन्मय गायक है। वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण के समुच्चय चरित्र के बजाय उनकी लीलाओं, बाल्यावस्थाओं और किशोरावस्था की लीलाओं तक को ही अपने को सीमित रखा। उसका प्रधान कारण सबसे बड़े पुरुषार्थ इस प्रेम की महिमा को ही सामने लाना था। प्रेम शेर के यहाँ भी अपने पूरे उन्मेष में प्रस्तुत हुआ है। सूर के यहाँ उनकी भक्ति उनकी कविता से इस हद तक एकात्म है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। छाप पुष्टि मार्ग के 8 भक्तों पर लगी थी, किंतु अष्ट छाप के जहाज कहे गए महज इस नाते कि भक्ति उनकी कविता में इस हद तक घुल पच गई है कि वह कहाँ भक्ति है, कहाँ कविता, कहाँ उसमें पुष्टि मार्ग है, कहाँ सूर का अपना भाव लोग पता ही नहीं चलता। और सूर के यह भाव लोग जिसके केंद्र में श्री कृष्ण की बाल तथा किशोर वय की लीलाएं हैं, इतना सेक्युलर, इतना प्रशस्त और इतना सर्वश्लेषी है कि उसमें किसी प्रकार के किसी स्तर के भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। यह सौंदर्य और प्रेम का लोक है, वो सबको बिना किसी भेदभाव के बांधता और अपने में जब जुक करता है। इस लोक में श्री कृष्ण है और उनकी बाल क्रीड़ाएं हैं, किशोर वय कृष्ण और उनकी गोपियां और राधा के साथ की प्रेम लीलाएं हैं। संयोग है तो वियोग का अथाह महासागर भी है। सूर इस लोक में रमे हैं और सहृदयों को उसमें रमाया नहीं है। समूचे सूर सागर में आज से अंत तक इसी की व्याप्ति है। आनंद सौंदर्य भी और प्रेम का सूर का रचा मनोलोक इतना मनोहारी है कि ग्रहीम और रसखान जैसे सहित मुसलमान कवियों ने भी उसमें ऊब डूब की है और समूचे भावातिरेक में उसे अपने अभिव्यक्ति में उतारा है। इस सौंदर्य और आनंद के इस समारोह को जो सूर के यहाँ बड़ी विशेषता से प्रस्तुत किया है, शुक्ल जी ने जीवनोत्सव की संज्ञा दी है। उनके गोपियों को पक्षियों की तरह स्वच्छंद कहा है। सूर के इस स्वप्न की तुलसी अंग्रेज कवि शैली के स्वच्छंद और वर्जना मुक्त समाज से की है। यह सब तो सूर ने रचा ही है। उनके द्वारा रचे गए सौंदर्य और आनंद के इस समुचे आख्यान को पढ़ने वालों ने और भी बहुत कुछ पढ़ा। वल्लभ समुदाय में श्री कृष्ण के शिष्य के रूप में अवतारी कल्पना के पीछे इस निहितार्थ को खोजा गया है कि ईश्वर की सबसे निष्कलुष कल्पना शिष्य के रूप में ही की जा सकती है, जो समस्त प्रकार के राग द्वेष और भेदभाव से परे होता है। सूर के कृष्ण ऐसे ही है भी। कृष्ण और गोपियों की स्वच्छंद प्रेम लीलाओं में सामंती समाज की चौहद्दियों में घुटती हुई स्त्री की प्रेम पिपासा उसकी अपनी आकांक्षाओं को समझा परखा गया है और गोपियों के वियोग में स्त्री के अपने स्वाभिमान को देखा गया है। स्त्री के व्यक्तित्व को, उसकी अस्मिता को, उसकी आकांक्षाओं को हिंदी कविता में उसके सभी रूपों में सामने लाने वालों में सूर पहले भक्त और पहले कवि हैं। सूर की कविता में कहीं किसी भी कोण से मन की सीमित संकुचित और आदमी की वर्ग वर्ण नस्ल धर्म और संप्रदाय में बांट कर देखने वाले वृत्तियों को प्रवेश नहीं मिल पाया है। सारे भेदों से अलग वह अपने प्रस्तुत में नितांत मानवीय है। सगुण भक्तों में गोस्वामी तुलसीदास का संबंध राम भक्ति से है। एक भक्त और एक कवि के रूप में तुलसीदास जितने मान्य हैं, उनके समाज दर्शन पर चले आ रहे वर्ण धर्म संबंधी चिंतन और परंपरागत धर्म शास्त्रों के गहरे निशान हैं, और इस नाते आधुनिक प्रगतिशील मानस से उसकी संगत नहीं बैठ पाती। वह विवादास्पद हुआ तो ही है, उसकी कठोर आलोचना भी अनेक विद्वानों ने की है। यह भी एक तथ्य है कि अपनी सामाजिक सोच के इस परंपरागत आधार के बावजूद तुलसी स्वतः अपने समय में कट्टर रूढ़िवादियों द्वारा लांछित किए गए हैं, जिसका अंतःसाक्ष्य भी उनकी रचनाओं में धूत कहो और अधूत कहो, किंतु इतना निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अपने मूलवर्ती आश्रम में बहुत कठोर न होते हुए भी तुलसी चली आ रही धार्मिक सामाजिक संरचना और उसके धार्मिक वैचारिक आधारों के प्रति केवल निष्ठावान है, लगभग अनमनीय भी हैं, भले ही उसके आदर्श रूप में वे उसे किसी कीमत पर क्षतिग्रस्त होते नहीं देख सकते और उसे बनाए रखना चाहते हैं। अपने समय की सामाजिक अव्यवस्था जिसे उन्होंने कलिकाल कहा है का कारण उन्होंने चले आ रहे वर्ण धर्म तथा सामाजिक आचारों और मर्यादाओं के प्रति लोगों की उदासीनता माना है। आचार्य रामचरण शुक्ल ने उनके लोक धर्म की जो व्याख्या की है वह तुलसी के समाज दर्शन को पूरी तरह उजागर करती है और जिसके तहत उस समुची सोच और सामाजिक विधि निषेधों का स्वीकार है। निर्गुण संत जिनके खिलाफ अपनी पूरी ऊर्जा से खड़े हुए थे, बहरहाल कोई इसे स्वीकार करे अथवा न करे, तुलसीदास का समाज दर्शन परंपराबद्ध है। परंपरागत सामाजिक सोच का अतिक्रमण तुलसी नहीं कर पाए हैं। कवि और भक्त के रूप में उनके महत्व के साथ उनके समाज दर्शन की इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। दिलचस्प तथ्य यह है कि अपनी सामाजिक सोच में तुलसी कितने ही परंपरावादी और युगबद्ध क्यों न हो, धर्म की कैसी भी प्रतिमा उन्होंने क्यों न गढ़ी हो, उनकी रचना धर्मिता और उनका रचनात्मक विवेक, उनके कट्टर समर्थक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भक्ति जन्य संबंधी इस स्थापना का साक्ष्य नहीं देता कि वह इस्लामी आक्रमण और इस्लामी प्रस्तुता के समक्ष हताश और हतवीर्य भारतीय मानस की प्रतिक्रिया है। अपने समय के राजाओं के शासन की, जिसमें अकबर जैसे मुगल सम्राट की शासन भी शामिल है, प्रजा का पक्ष लेते हुए उन्होंने कटु आलोचना की है और कलयुग के यह भ्रष्ट शासन ने विश्व में राम राज्य की आदर्श शासन व्यवस्था का ढांचा प्रस्तुत किया है, किंतु उन्होंने कहीं भी इस्लाम, मुसलमानों अथवा भारत में उनकी अपनी सत्ता को लेकर कटुक्तियां नहीं की हैं। हिंदू धर्म और इस्लाम को आमने सामने नहीं खड़ा किया है। हिंदू और मुसलमानों के बीच विग्रह, वैमनस्य और प्रतिद्वंदिता के वृत्तांत नहीं दिए हैं। धार्मिक विद्वेष या आधुनिक शब्दावली में जिसे सांप्रदायिकता कहते हैं, उसके बीज नहीं बोए हैं। भावना की रौ में कहीं उनकी रचनाओं में तुरक, म्लेच्छ जैसे शब्द आ भी गए हों, तो वे ऐसे संदर्भों में ही आए हैं जिनसे हिंदुओं और उनके अपने समाज के पाखंडियों, धूर्तों तथा अमानवीय आचरण करने वालों का भी उतना ही गहरा संबंध है। तुलसी की रचना भूमियों में अयोध्या भी रही है, जो पिछले कुछ समय से कतिपय कारणों से विशेष ख्यात हुई है। इसी अयोध्या में हमारी सर्दी के इस आखिरी दशक में हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने साधारण जनमानस को सांप्रदायिक भावनाओं से विषाक्त कर ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद की ध्वंस लीला को अंजाम दिया था और उसे हिंदुओं के शौर्य और आत्मगौरव के पुनर्प्रतिष्ठा का नाम देते हुए अपने ही हाथों से अपनी पीठ थपथपाई थी। यह बाबरी मस्जिद गोस्वामी जी के समय में अयोध्या में विद्यमान थी, उसे बने हुए अरसा भी नहीं हुआ था, किन्तु गोस्वामी जी की रचनाशीलता में उसका कहीं उल्लेख नहीं है। कहीं भी राम जन्मभूमि को विनष्ट कर मस्जिद खड़ी करने के इस्लामी अभियान पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं है, उल्टे एक स्थल पर जहां उसका उल्लेख उन्होंने किया भी है, इस संदर्भ में किया है कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है, कोई उन्हें धूत, अवधूत, राजपूत, जुलाहा कुछ भी क्यों न कहें, न तो उन्हें किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करना है और न ही किसी की जात बिगाड़नी है। वे तो राम के गुलाम है, जिसकी जो मर्जी है वह करे। वे मांग कर खाते हैं और आराम से मस्जिद मस्जिद में जाकर सोते हैं। न उन्हें किसी से एक लेता लेना है और न एक का देना है। तुलसी के मनोलोक का यह पहलू दिलचस्प ही नहीं, मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपने को गोस्वामी तुलसीदास से बड़ा और मेहतर हिंदू मानते हुए बाबरी मस्जिद के सवाल पर समूचे देश में धर्मोन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं। गोस्वामी जी का प्रेत नहीं था और जो बहुलतावादी वाले भारत के अपने चरित्र तथा अपनी छवि के भी प्रतिकूल है। बहरहाल तुलसीदास अपनी सारी परंपरा सामाजिक सोच के लिए लिए हुए भी अपनी रचनाओं में धार्मिक और सांप्रदायिक विद्वेष से कतई अलग धर्म की उस परिभाषा को लेकर भी हमारे सामने आते हैं, जो वस्तुतः किसी भी धर्म का सार तत्व मानी जा सकती है और वास्तविक मनुष्य पर आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अस्वीकार नहीं हो सकती। पर ही सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम कह चुके हैं कि गोस्वामी जी के रचनात्मक और मानवीय सरोकारों का दायरा बहुत बड़ा है, उनकी रचनाशीलता का पाठ भी बहुत चौड़ा, विशद और बहुआयामी है। ऐसी व्यापक और बहुआयामी रचनाशीलता में अंतर विरोधों की स्थिति को अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। गोस्वामी जी ने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ चित्रित किया है। जरूरी नहीं कि उनके कहे या लिखे को या किसी भी रचनाकार के वह कितना भी बड़ा रचनाकार क्यों न हो, कहे और लिखे को हम अंधश्रद्धा के साथ उसकी संपूर्णता में स्वीकार करें। जरूरी यह है कि अपने विवेक को जागृत रखते हुए अपनी विरासत से हम वह कुछ चुने जो बदले हुए समय में हमारी रचनात्मक और तथा मानवीय प्रकृतियों के अनुकूल हो, बेहतर मनुष्य और बेहतर मानवीय समाज की रचना में हमारा मददगार हो। गोस्वामी जी की रचनाशीलता ऐसा बहुत कुछ हमें देती है और जो हमें शिरोधार्य भी है। वस्तुतः गोस्वामी जी के व्यक्ति और उनके रचनाकार से हमारा अंतरंग और पारदर्शी साक्षात्कार उन रचनाओं में नहीं हो पाता जिनमें उनके और हमारे बीच में राम कथा का समूचा विस्तार और उसमें रचा उनका व्यक्ति और रचनाकार भी खड़ा होता है। इन रचनाओं में गोस्वामी जी की अनेक प्रतिक्रियाएं कथा की स्थितियों तथा संदर्भों या फिर पात्रों और पात्रों की अपनी मनोभूमि के अक्ष के रूप में सामने आती है, उनकी उपज बनकर हमारे सामने आती है। कठिन हो जाता है यह पता लगाना कि ऐसे क्षणों और ऐसे स्थलों में गोस्वामी जी का मन बोल रहा है या पात्र और परिस्थितियों की संगत में उन पर वे टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसे स्थलों में कहीं कही गई कुछ बातों को गोस्वामी जी के अपने विचार मान लेने पर बहुत सी भ्रांतियां भी सामने आती हैं। गोस्वामी जी पर नारी जात के विषय में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप इसी प्रकार की भ्रांतियों से उपजा आरोप है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी इत्यादि। इस मुद्दे पर गोस्वामी जी के लिए किसी भी तरह के डिफेंस को प्रस्तुत न करते हुए कहना चाहूंगा कि गोस्वामी जी के विचारों को लेकर अन्य कोई भी आरोप उन पर भले लगाए जाए, वे नारी विरोधी हैं या नारी का अवमूल्यन करते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार के आरोप को उनके संदर्भ में स्वीकार नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी ने स्त्री के अनेक आदर्श चरित्र रचे हैं, जैसी दलीलें इस आरोप के विरोध में लोगों के द्वारा दी गई हैं। ये सारी दलीलें एक तरफ सवाल हैं कि जो व्यक्ति खुद अपने जीवन में नारी की देह और उसके सौंदर्य के प्रति इतनी गहराई से संसक्त हो कि बिना बुलाए उसके पीछे उसके पितृगृह पहुंच जाए, जिसके उत्तरवर्ती समुचे निर्माण में उस स्त्री की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हो, समझ में नहीं आता कि ऐसा व्यक्ति क्या वस्तुतः नारी विरोधी हो सकता है। राम कथा से संबंधित उनकी रचनाओं में सीता के वियोग में कही गई राम की विरह जन्य मार्मिक उक्तियां अकेले राम की नहीं है, उनके माध्यम से तुलसीदास का विकल मन भी बोला है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन जैसा राम का परम भक्त रामचरितमानस की पर समाप्ति करते हुए अपने और राम के बीच जन्म जन्मांतर के प्रीतिकर संबंध की बात करता हुआ जब उन्हें लाखों दूसरी उपमाओं से अलग कामी व्यक्ति और स्त्री के प्रति उसकी गहरी संशक्ति जैसी उपमा देकर परिभाषित करता है, तो क्या सचमुच माना जा सकता है कि तुलसीदास नारी विरोधी भी हो सकते हैं? उनकी इस उपमा के पीछे क्या उनके अपने व्यक्तिगत जीवन का तल्ख अनुभव और उसके पहले के मधुर मादक क्षणों की अनुभूति न रही होगी? कामी नार प्यार जिम लोभी कह दाम, अर्थात कामी व्यक्ति को जिस प्रकार स्त्री प्यारी होती है और लोभी को जिस प्रकार अपना धन प्यारा होता है, हे राम जन्म जन्मांतर तक तुम मुझे इसी तरह प्रिय रहो। उपमाएं जिनके एक इशारे पर नाचती हो, ऐसे सिद्ध कवि तुलसी को अपने और राम के बीच के प्रीति का संबंध को पावन संबंध को ज्ञापित करने के लिए क्या और कोई उपमा नहीं मिल सकती थी? बहरहाल यह तो प्रसंग में आ गई चर्चा है। तुलसीदास के कवि और भक्त को कुछ नजदीक से देखें, जहां वे विवादों से बहुत कुछ अलग अपनी सारी अंतरंगता और उत्कर्ष के साथ हमसे मुखातिब होते हैं। जैसा हम कह चुके हैं, ऐसा उन कृतियों में अधिक पारदर्शी है जिनमें पाठक और उनके बीच किसी कथा का इतिहास वृत्त नहीं है, वहाँ पाठक सीधे उनसे मुखातिब होता है। ऐसी रचनाएं अनेक है जिनमें या तो उनकी भक्ति का आवेग और सक्रियता है या फिर उनके जिए भोगे देखे सुने का साक्ष्य और उसके अनुभव कवितावली तथा विनय पत्रिका में यह हमें सहज सुलभ है। कुछ अन्य लघु आकार की रचनाओं मसलन गीतावली हनुमान बाहु में भी कबीर जायसी और सूर की तरह प्रेम की महिमा का गायन तुलसीदास ने भी उसी तन्मयता से किया है। प्रेम उनके यहाँ भी परम साध्य है, वह प्रेम जिसका उदाहरण उन्होंने चातक के माध्यम से दिया है, जिसे इस हद का प्रेम प्राप्त है। राम उसके लिए सहज सुलभ है, किंतु उनके यहाँ भी यह प्रेम उतना सहज लब्ध नहीं है। बिरला ही उसे पाता है और फिर राम को तुलसी ऐसे ही प्रेम के आकांक्षी है। यह प्रेम हर प्रकार के संकीर्णता और भेदभाव से परे है। भक्ति की भावभूमि भी तुलसी के यहाँ बहुत प्रगाढ़ है। भक्ति की इस मानसिकता में वे किसी भी प्रकार के भेद को अमान्य करते हैं और निश्चल निष्काम भक्ति को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। विनय पत्रिका में उनकी भक्ति की यह जमीन सबसे अधिक भास्वर हुई है, जिसमें सच्चे निष्कलुष अंतःकरण के साथ आराध्य के समक्ष समर्पण है। हर व्यक्ति इस भक्ति का अधिकारी है यदि उसका अंतःकरण निष्कलुष हो। विनय पत्रिका में और कवितावली में तुलसी अपने जीवन के और समाज के यथार्थ को भी सामने लाते हैं। भूख दैन्य अभाव जिन्हें उन्होंने खुद जिया भोगा था, साधारण जन की ऐसी ही संवेदना यहाँ उनके चित्रण का विषय बनी है। कवितावली में वे दरिद्रता रूपी रावण के विनाश के लिए राम को पुकारते हैं, अकाल जन साधारण जन के क्लेशों को सामने लाते हैं। उनके जीवन की विपदाओं का बखान करते हैं। यही वे पेट की आग को सबसे बड़ी आग भी कहते हैं, क्योंकि वह उनकी अपनी जानी और भोगी हुई थी। समूचे मध्यकाल में पेट की आग को रेखांकित करने वाले वही अकेले रचनाकार हैं। साधारण जन की व्यवस्था के मार्मिक चित्र उनके यहाँ हैं, और यही तुलसी अपनी सबसे प्रशस्त मानवीयता और सबसे प्रगाढ़ मानवीय संवेदना के साथ हमसे परिचित होते हैं। कवितावली का उत्तर कांड इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विनय पत्रिका में ही कलिकाल उन्हें आतंकित करता है। समाज में वे मनुष्य का अवमूल्यन देखते हैं, पाखंड छल और छद्म का साम्राज्य पाते हैं। कलिकाल के भयावहता से आक्रांत हुए राम से गुहार करते हैं कि वह समाज को, मनुष्य को कलिकाल के इस दुष्चक्र से छुड़ाए। यहाँ उनकी दृष्टि में हर प्रकार से के भेदभाव से परे संपूर्ण मनुष्यता है, उनके समय का संपूर्ण समाज है। कलिकाल ने से जिसकी मुक्ति के लिए उनकी याचना है, वर्ग वर्ण धर्म संप्रदाय जात तथा नस्ल के सारे भेदों से परे उनकी दृष्टि के समक्ष महज मनुष्य है, जिसके सारे दुराचरण को अपने ऊपर लेते हुए वे राम के समक्ष नत होते हैं। हम जैसा कह चुके हैं, तुलसीदास की मानवीय संवेदना के साथ इन्हीं रचनाओं में हमारा सम्यक साक्षात्कार होता है। हनुमान बाहु वृद्ध और रोग जर्जर तुलसी की व्यथा और मोहभंग को सामने लाती है। वात रोग और बाल तोड़ से ग्रस्त शारीरिक यातना से अपनी मुक्ति के लिए वे वज्रांग हनुमान को पुकारते हैं, राम को पुकारते हैं, शंकर का आह्वान करते हैं, किंतु यातना से मुक्त करने कोई नहीं आता। तुलसी का मोहभंग यहाँ पर आकाष्ठा पर है, हार कर वे मौन हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण साधारण जन की धार्मिक आस्थाओं से अधिक लोक जीवन के अंतरंग की तुलसीदास द्वारा की गई पहचान और उसकी विवृत्ति है। लोक मन को वे गहराई तक जाकर ठा सके थे और उसके सुख दुख आशाओं आकांक्षाओं के साथ अपना एकात्म कर सके थे। उनके इस पहलू की उपेक्षा कर उन्हें भजन पूजन का माध्यम बनाकर अपने निहित स्वार्थों के लिए उनका इस्तेमाल करने वाले उनके जिस पहलू को भी प्रस्तुत कर जरूरत उनकी रचनाशीलता से छल कर आती हुई उनकी संवेदना को उजागर करने की है, जो वैचारिक आग्रहों और अंतर विरोधों के बीच और उनके बावजूद उन्हें साधारण जन से जोड़ती है और अपने चरित्र में बिना किसी भी तरह के भेदभाव के बस मानवीय और नितांत मानवीय है। भक्ति आंदोलन के इसी प्रवाह में मीरा भी अपने इस समूचे दर्द के साथ हमसे परिचित होती है, जिस पर आवरण भले ही भक्ति का चढ़ा हो, अपनी वास्तविकता में वो उस नारी हृदय का दर्द और उसकी वेदना है। सदियों के सामंती परिवेश और सामंती मानसिकता के तहत नारी जिसे अपने हृदय में संजोए गीली लकड़ी की तरह सुलगती धुंधुआती रही है, मीरा ने उसे व्यक्त किया है, उसे वाणी दी है और उसके माध्यम से पुरुष वर्चस्व वाले समाज में नारी के प्रति बरती जाने वाली उस अमानवीयता को उजागर किया। नारी जीवन के साथ एक सनातन नियत के रूप में जो नाना धर्मशास्त्रों के आधार पर गढ़ दी गई है, प्रेम और भक्ति के गहरे और गंभीर उद्गारों के बीच मीरा की रचनाओं में नारी की इस अंतर व्यथा को सुनना कठिन नहीं है, किंतु मीरा नारी मन की व्यथा के साथ साथ नारी मन की मुक्तिगामी आकांक्षा को, उसमें पल रहे विरोध और विद्रोह को भी मूर्त करती हैं और इसके साक्ष्य के रूप में खुद हमारे सामने आती हैं। भक्ति आंदोलन की एक महत्वपूर्ण देन भक्ति तथा उपासना के क्षेत्र में मनुष्य मात्र के समान अधिकार के साथ नारी का भी घर परिवार के चौहद्दी से निकलकर भक्ति की देहरी पर आ जाने के लिए किया जाने वाला आह्वान है। समान अधिकार की इस बात का संबंध यद्यपि भक्ति तथा उपासना के क्षेत्र से ही है, किंतु उसका असर सामाजिक जीवन में दलितों तथा नारी की अपनी स्थिति पर भी पड़ा। कम से कम सामाजिक समता की उनकी आकांक्षाओं को जरूर एक नया जीवन मिला। भक्ति आंदोलन और उसके तहत सामने आए भक्ति काव्य पर बहुत कुछ अलग अलग दृष्टियों से लिखा गया है। भक्ति की यह कविता, हम कह चुके हैं, अपनी अंतर्वस्तु में बहुआयामी और उसके निहितार्थों में अनेक आयामों पर अंतर विरोधी और विवादास्पद भी है। इन अंतर विरोधों और विवादों से निर्गुण संतों और सगुण भक्तों दोनों का संबंध है। धर्म और भक्ति पर आधारित होने के नाते समाज पर उसका व्यापक प्रभाव है और इस प्रभाव के चलते हर युग और हर समय में निहित स्वार्थ अपने हित में उसका इस्तेमाल भी करते रहे हैं। अगली सदी की दहलीज पर पैर रखते हुए भारत इस भक्ति काव्य के गहरे संस्कारों के साथ नई सदी में जा रहा है। अपने देश को सांप्रतिक जीवन में हमने साधारण जनता के मन में बसे भक्ति के इन संस्कारों को गहरे धर्मोन्माद में बदलकर सांप्रदायिकता के विष के रूप में पूरे समाज में संक्रमित होते देखा है और इस तरह के प्रयासों में इधर और भी गति आई है। प्रस्तुत निबंध में हमारा आशय भक्ति जन्य की इस बहुआयामिता में और उसे लेकर उठे और उठाए गए तमाम विवादों में न जाकर पूरी गंभीरता, पूरे विश्वास और पूरी वस्तु परकता में महज उसके इस महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता रहा है जो तमाम प्रकार के विवादों से परे उसका बुनियादी पहलू है। और वह यह कि समूची भक्ति कविता उससे और उससे जुड़े संत और भक्त उनके अपने वैचारिक आग्रह और अंतर विरोध जो भी हों बुनियादी तौर पर सेक्युलर हैं, सेक्युलरिज्म के वास्तविक आशयों में सेक्युलर हैं, अर्थात उन्होंने धर्म और भक्ति को उसके नितांत मानवीय सार्वभौमिक और सार्वजनीन चरित्र के साथ प्रस्तुत किया है। धार्मिक विद्वेष और सांप्रदायिक संकीर्णता से उनका कोई संबंध नहीं है। वे धर्म को उसके उदात्ततम रूप में पहचानने और प्रस्तुत करने वाले संत और भक्त हैं, जहां धर्म मनुष्य के करणीय कर्तव्यों का ही दूसरा नाम है। समाप्त।